ایمان کیے تلق کیا اور پتری دیواتے میں کیا جی کیا
نندو
لوکی سمتی سنسار کالین اسنان شوچادھیان سنسکار تپسے شدھن دانے سنتوشیا گردان آتما آتم کل اس کی ویاخیا ہم نے کی تھی یہ کون کون وستوئیں کیسے کیسے شدھ ہوتی ہیں بتلایا تھا کہ بھومی کال کے دوارا پیس دینے کے بعد میں کہیں کسی جگہ مرڈر ہو گیا جنگل میں وہ تو استھان اپوتر ہو گیا کچھ دنوں کے بعد میں برسا ہوئی دھوپ پائی کچھ دنوں کے بعد میں اپنے آپ بھومی شدھ ہو جائے گی یہ بتلایا تھا دیج ہوتا ہے شدھ نانی تیادی کے دوارا شوچ کے دوارا اپوتر وستو لپت دربی تیادی شدھ ہو جاتی ہے سونا اور ایسی چیزیں آگ میں جلا دیا جائے تو شدھ ہو جاتا ہے اسی پرکار سے منتر اتیادی کے پربھاؤ سے گرم اتیادی کا سنسکار ہوتا ہے تپسیا کے دوارا اندری اتیادی پوجا کے دوارا برہمن اور دان کے دوارا برہمن سنتوش کے دوارا من اور آتم ودیا بھکتی کے دوارا آتما پوتر ہوتی ہے یہ سب بتلایا اسی طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا سب جتنے بھی شدھ کرنے کی چیزیں ہیں یہ شدھ ہو گئے ویشنو میں کسی کا وچار نہیں ہے اس کو کوئی یعنی جیون بھر ہری نام کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آتما نتیہ ہے اجر ہے امر ہے اور سب سمے اپوتر ہے یہ مٹی آکاش جلوایو پنچ تتو کا بنا ہے تو کسی کے مرنے پر بھی کسی کے جنم لینے پر بھی سو چور اصو ان کو جن کو یہ سب وچار سے جو اتیت ہیں ان کے یہاں کبھی بھی سوچ نہیں ہوتا ایک بھگوان نام کرنے سے انتر اور باہر کبھی شدھی ہو جاتی ہے جس مرے کنڈری کاشتم سب بھائی آبھیانتر میں شدھی جبھی ہو جاتا ہے تو جو سب سمے جیون میں اپنا ہری نام کیا ہے تو وہ پوترتا اس کو نہیں ہے یہاں تک کہ ان کا انتم جو سنسکار ہوتا ہے مرنے کے بعد میں اس کے لیے بھی اپیکشت نہیں ہے وہ اپنے آپ سب کر لیے ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے مرنے کے بعد میں برہمن جمانا اتیادی اور ان کا جو مرنو پرانا یہ سب بھی ضروری ہے سب لوگ کی ریتی سے بھگوان کا پرکاش نویدن کر کے ان کو دیکھ لیا جاتا ہے جگتی کرشن کے کرشن بھگوان ہیں ان کے جنم سے پوترتا ہوگی نہ پوترتا ہوگی پھر بھی سماجک ریتی ہے لوکک ریتی کے انوسار ہے اپنے کو اپوتر سمجھ کر کے اسنان کر کے دان کر کے اور سب چیزوں کو جنم برہمنوں کے دوارا یہ سب چیز کا سنسکار انہوں نے کرا سنسکار ایسے سو منگل گرو وپرا ستماگھو بندنا گایا کا جگو نیدو بندو بھیو دند بھی بجنے لگی نگارے بجنے لگے آکاش سے خون کی برسا ہونے لگی دیوتا لوگ برسانے لگے دند بھی اتیادی بجنے لگی سوت ماگھو بندی پتر یہ سب کل کی مہینہ نند بابا کی مہینہ یہ سب گانے میں ایک چیز چھوڑ گیا جو میں کہنا چاہتا تھا وسودیو دیوکی کے لیے تو یہ لکھا دوسرے ادھیا میں کہ ان کے من سے دیوکی کے گرب میں بھگوان نے من سے منتر کے دوارا پرویش کیا یہ تو بھاگوت میں لکھا نندا جسودا جی کے لیے کیا گوپال چمپو میں انہیں سب اسلوکوں کی ویاخیا کرتے ہوئے لکھا گیا پرسدیو اور دیوکی ایک دیوی پرسپر بات چیت کر رہے ہیں بات چیت کرتے کرتے نند بابا نے کہا سب کی بات یہ جب کہ پرجن جی نند گاؤں میں نندی گاؤں نند گاؤں और इनको पुत्र नहीं हुआ, उस समय ये अपुत्र थे। अर्धवस्था 50 वर्ष तक पहुंच गए, अब तीसरे चरण में वो प्रवेश किए। और उस समय तक यशोदा जी को कोई भी संतान नहीं है, प्रजाएं दुखी हैं, परजन्य महाराज भी दुखी हैं, और उनके दो भाई उपानंद और अभिनंद, इनको चाचा, पांच पांच लड़के लड़कियां ये सब है, घर भरती है उनका। और उनके छोटे भाई सुनंद और नंदन, इनको भी पुत्र और कन्याएं हैं, किंतु नंद महाराज को संतान नहीं, बड़े दुखी। परजन्य भी बड़े दुखी हो गए, और वहीं पर नंद गांव में उन्होंने तपस्या की, आशुतोष की।
अक्षेश्वर महादेव,
अक्षेश्वर महादेव, ये हमारे पुत्र को एक लाला हो गया, संतान उत्पत्ति हुई। होने के बाद में तपस्या उन्होंने की, और वरदान भी उनको शंकर जी का मिला, बहुत ही शीघ्र उनको पौत्र होगा और विश्व में वो बहुत ही प्रसिद्ध होगा। कुछ दिनों के बाद में उनको संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने पांचों पुत्रों को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा, ये देखो अब मैं वृद्ध हो गया, तुम सब बाल बच्चेदार हो गए, अब मेरा घर में रहना उचित नहीं, अब तो मैं नारायण का भजन करना चाहता, इसलिए तुम लोगों को ऊपर में यथाजुग्य भार देकर के अब जाना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र उपानंद को इन्होंने अपना राज्य संभाल सब दिया, और कहा जो भाइयों को बड़े प्रेम से संभाले। उन्होंने कहा, पिताजी राज्य का संचालन हमसे नहीं होगा, आप तो जानते हैं कि नंद बड़ा बुद्धिमान है, यदि संभालने वाला है तो यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा, जैसे तुम यदि खुशी मन से ऐसा कर रहे हो तो मैं भी जानता हूँ कि नंद ही इसके लिए उपयुक्त है, किंतु वो पिछला लड़का है, दो के बाद में यदि ऐसा करूँ तो यह अनिति होगी, बड़े लड़के को मालिक उत्तराधिकारी नहीं बना करके बीच वाले को बना दिया तो प्रजाएं क्या कहेंगी और लोग सब क्या कहेगा, इसलिए मैंने इसको कहा, तुमको कहा। तो ठीक है, एक बात करना पड़ेगा, तुम उसके मंत्री हो और राज्य संचालन इत्यादि सब तुम्हारे परामर्श से ही होगा, तुम करें और वो राजा रहे, गोवों का ये सब मालिक रहे। फिर चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए, अब उन्होंने ही राजतिलक पिताजी ने किया, इसके बाद में उपानंद जी, अभिनंद जी और सब लोगों ने किया, प्रजाएं बड़ी खुशी हो गई। किंतु सभी कुछ ठीक था, धन संपत्ति गोधन सभी कुछ है, किंतु महाराज को कुछ न कन्या कोई संपत्ति, भलती उम्र हो गई, बहुत दिन हो गया, सब लोग निराश। ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र इसी यज्ञ की अर्थ कराई, उससे महाराज को लड़का हो जाए। सृष्टि यज्ञ सब लोग लग गए, कोई देवी बना रहा, ब्राह्मण भी सांदिल्य ऋषि आ गए, उनके और सब परिवार वाले आ गए, ब्राह्मणियां भी आ गई, देवी बनने लगी, घी सभी दूध चावल हल्दी कुमकुम जो कुछ भी जरूरत था सब कुछ। नंद बाबा जी कह रहे हैं घर में है, उनको उल्लास, यशोदा जी से करें ये पुत्र की यज्ञ हुई, और भी तो पश्चिम बार हो गई, कुछ तो हुआ नहीं, जब पुत्र ही नहीं लिखा तो अब हमको ये पुत्र की तैयारी करने की जरूरत। दूसरी बात ये है, संसार में पुत्र होता है देह से, शरीर से उत्पन्न, भगवान तो अजय है, अजन्मा है, सच्चिदानंद घन है, तो वो जो यज्ञ इत्यादि होता है वो शरीर पर प्रभावित करता है, किंतु भगवान के जन्म में भाव प्रधान होता है। हमारे अंदर वैसा भाव नहीं है। विशेष करके ये होता है कि इस यज्ञ से हमको पुत्र जरूर पैदा होगा, ये निश्चयता निश्चय पूर्वक हृदय में दृढ़ता के लिए हो गया विश्वास। सब तो यज्ञ फल देता है, अन्यथा फल नहीं देगा। संसारी कार्यों में यही प्रधान होता है। द्रव्य से यज्ञ से जो वस्तुएं हैं, शुद्ध घी, निर्मल तीर्थों का पानी, शुद्ध ब्राह्मण, मंत्रों का शुद्ध रूप से उच्चारण, निर्लोभी ब्राह्मण और जो करा रहा है यज्ञ उसकी भावों की शुद्धता, और इससे जिसके लिए मैं यज्ञ करा रहा हूँ ये जरूर ये होगा ही, और जो यज्ञ कराए उनमें भी ये भावना, जो मंत्र में यज्ञ करा रहा हूँ उनका फल निश्चित रूप से होगा ही। यदि जो यज्ञ करा रहा है उसके अंदर में है मैं यज्ञ तो करा रहा हूँ किंतु ये होगा कि नहीं होगा ठीक नहीं तो नहीं फल होगा। इसलिए कलिकाल में यज्ञ अधिकतर से निष्फल हो जाए या साधक के हृदय में इतना पूर्ण विश्वास नहीं तो नहीं। नंद बाबा ने कहा कि ये पार्थिव यज्ञ से भगवान का क्या संबंध है, इसलिए मैं समझता हूं कि पुत्र हमको, हम तो दिन रात यही भावते हैं कि भगवान है वो हमारे पुत्र हैं। मैं संसार के पुत्रों को नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में आपका विश्वास नहीं है। नहीं, यज्ञ में तो विश्वास है किंतु उन ब्राह्मणों में है या नहीं, और हमको तो निराशा है जो इस यज्ञ के द्वारा साधारण पुत्र होता किंतु अलौकिक पुत्र होना ये तो असंभव। दोनों में तक विस्तार चलता रहा, अंत में जो यशोदा जी की विजय हुई देखा ये नहीं, हमने देखा नंद बाबा ने काले देखा। हमको कुछ दिनों से ऐसा मालूम हो रहा है कि हमारे हृदय में कोई बच्चा है और बड़ा ही सुंदर अद्भुत है, श्याम रूप का है, बहुत ही अद्भुत अलबेला लड़का है, और वो हमारे हृदय से निकल के तुम्हारे हृदय में जाता है और फिर आंगन में खेलता है और हम उसे तरह तरह से लालन पालन कर रहे हैं, ऐसे मुझे प्रतीति हो रही है। पता नहीं कहते हमको भी कुछ दिनों से ऐसा ही मालूम हो रहा है। जब से पद्मनाभ बाबा जी ने वहां पर आराधना की उसके बाद से हमें कुछ ऐसी प्रतीति हो गई। तो फिर जगह कराने में हानि क्या, जब होने दो। इसके बाद में सोचिए, इसके बाद में उन्होंने देखा कि नंद बाबा के हृदय से एक तेज निकला, उसमें तो ये भी वर्णन किया गया। उसके साथ में कोई किशोरी का भी देखा गौरांगी, और ये दोनों उनके हृदय से दुख भर से निकल करके और यशोदा जी के हृदय में। दूसरे दिन ही यशोदा को कुछ भान हुआ गर्भ का, तो उन्होंने पति को बतलाया ये आज हमको कुछ दूसरी जैसा लग रहा है, अर्थात भगवान उनके गर्भ में आ गए। अपनी कृपा से स्त्री पुष्ट के इच्छा से वो नहीं आए। जब वो देखते हैं कि भावना प्रधान हो गई, इसके अंदर में प्रेमा भक्ति का आविर्भाव है और ये हमें लाल पालन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, जब ऐसी भावना देखते हैं तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए यहां पर बतलाया आत्मज उत्पन्न में, अब इसका अर्थ बदल जाएगा किंतु आत्मा, वहां पर आत्मा वही जाए तो पुत्र हुआ संसारिक लौकिक रीति से, अब इसमें आत्मनि जायते, आत्मा में या स्वयं अपमन आत्मनि माने स्वयं वो उनके मन में आत्मभूत उनके हृदय में आत्मभूत आत्मनि माने क्या अपने स्वयं भगवान अनुग्रह करके नन आत्मा प्रवचन न लभ्यो मुनि दया भवना जमे सिंह लक्ष्य सशस्त आत्मा भगवान कृपा करके जिसके हृदय में सोचते हैं कि ये योग्य पात्र है तो उसके हृदय में आत्मभूत स्वयं भगवान को कोई जन्म नहीं देगा भगवान को कोई बुला नहीं करता भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता ये सारी क्रिया और परिश्रम से नहीं होता इसलिए योग तपस्या व्रत ज्ञान ये सब मन और शरीर की कसरते हैं इसके द्वारा भगवान नहीं सुनेंगे और नहीं आएंगे न दर्शन भक्ति के द्वारा देंगे इसलिए नंद महाराज की प्रेम बात्सल्यमय भक्ति से प्रसन्न होकर के वहीं पर आत्मनी आत्मा के द्वारा स्वयं वहां पर आदिभूत उत्पन्न प्रकट हो गए इसलिए उनको देख करके ज्यादा आजाद हो बहुत ही आनंद हुआ किसी भी साधन से भगवान को संसारिक साधनों से भगवान को नहीं पाया जाता आज हमारे पुत्र पुरुष ने पढ़ाया तो वहां पर तो ये ऐश्वर्य भावना सुखी नहीं केवल नर्वत लीला में जैसा भाव होता है किंतु कहीं भी भगवान की भक्ति करने पर सिद्धांत के विरुद्ध कोई चीज नहीं है लौकिक भावना नहीं आएगी सब वेद शास्त्र उसका अनुगमन करते हैं मधुर लीला में राधा कृष्ण का जो भावना है जैसे विवाह कहीं गोपियों का हुआ और कृष्ण से प्रीति थी ये तो जाग बुद्धि हुई किंतु शास्त्र ने सर्वत्र भगवान के प्रति जाग बुद्धि इत्यादि का समर्थन किया गया और कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी उनकी कोई भी बुद्धि नहीं हुई ये शास्त्र सिद्धांत विचार सब उसका अनुगमन करते हैं भक्ति का भक्ति का कोई भी ऐसा कोई पदक विक्षेप और कार्य नहीं होगा जिसमें कोई भी मर्यादा से चुप हो जाए प्रेम की भी मर्यादा है मर्यादा से तो भगवान बंदे हुए आराम के रूप में आए किंतु प्रेम की भी अपनी मर्यादा है कि नहीं है जैसे दिख रहा है राधा जी का उद्धव को देखकर या और कहीं दिख रहा है उस मर्यादा को योग माया रक्षा करती है भूल भ्रांति से भी कोई धर्म विरुद्ध व्यापार उसमें कभी भी नहीं आ सकता इसलिए महामना जो महामना इसीलिए कहा कि इनके हृदय में बात्सल्य प्रेम है दोनों के इसीलिए भगवान स्वयं आत्मनी अपने आप आविर्भूत हुए यदि किसी के हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता है तो आत्मा प्रसन्न ये निश्चित होगा सबई पुंसान परो धर्मो जो भक्ति अहतुष्य अप्रतिहता जय आत्मा आत्मा प्रसन्नता लाल भक्ति किसी को हो गई और उसका मन चंचल है दुखी है अशांत है ये कभी भी नहीं हो सकता हरिनाम करते हैं भजन करते हैं 100,000 हरिनाम भी करते हैं हो भजन भी करते हैं किंतु मन अशांत रहता है मन दुखी रहता है तो क्या समझो भक्ति का लेश भी नहीं है केवल बाहरी रूप में वो कर रहा है उनका भक्ति नहीं है जहां भक्ति हुई थोड़ी सी भी हुई तो थोड़ा सा आनंद भी हो वो कुछ लोग है ना भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र एक ही साथ में साधन भी होगा तुष्टि भी होगा पुष्टि भी होगा तीनों बातें स्वयं एक साथ खाएंगे भूख कम हो जाएगी शरीर में दूध भी खाना भी होगा और जब हम खाते हैं भूख जाती ही नहीं है खाते चले जा रहे हैं सारे सारे मतलब जो कुछ गए कोई भूत तो लग गया है प्रेत लग गया है वो खा रहा है ऐसा भी होता है इसलिए भक्ति परेशान हो विरक्ति तीनों भक्ति करने से जो हरिनाम कर रहा है, गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा कर रहा है और भक्ति कर रहा है, उसको दुख होगा। जो लोग देखते हैं कि अरे भाई ये दीन भाव परिश्रम ये तीन दिन से आयोजन चल रहा है जन्माष्टमी का, थक करके शुरू हो गया, बेकार ये सब भजन खजन कुछ नहीं होता, ये दुख हुआ तो जन्माष्टमी नहीं हुई। एक महीने से कि दो महीने से ही चल रहा है,
गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से
चल रहा है आयोजन। कोई कहा बेकार था ये सब, इतना कष्ट अब मठ में नहीं है, ये भावना है तो ये भजन हुआ। जन्माष्टमी तो भजन का अंग है ना, भक्त मात्र को जन्माष्टमी, एकादशी, रामनवमी इत्यादि का पालन करना ही है। जन्माष्टमी पालन किया और ये इतना दुख कष्ट हो गया, मन खराब हो गया, तो क्या हुआ? यदि आनंद ही नहीं हुआ, महामना होकर के जातवाद नहीं हुआ भक्ति के द्वारा, ये इतना किया, इतना आनंद की बात। नगर संकीर्तन में हम लोग गए, उसका एक एक शब्द जहां तक गया होगा, पशु प्राणी की पतंग मनुष्य जहां होंगे, हरि बोल की ध्वनि और हरि नाम की ध्वनि पहुंची होगी कि नहीं, सबके कानों में पहुंचेगी। ये कल्याणकारी नहीं हुआ होगा? जो यहाँ आए, प्रसाद पाए, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ और यह सब दर्शन किया, कृष्ण नाम सुना, प्रवचन सुने, उनका कोई कल्याण नहीं होगा? ऐसे ही बेकार का परिश्रम कर दिया, कितने आनंद की बात है कि लाखों जीव के कान में ये सब गया, प्रसाद किसी न किसी रूप में गया और उनकी सेवा भी इसमें समर्पित हो गई। किंतु यही मसीह है, कुछ लोग इसकी महिमा नहीं जान पाते, इसलिए उसको उसका उद्देश्य नहीं समझ पाते। एक बार गुरु जी कह रहे थे हमारे नवदीप परिक्रमा के, अच्छे बदलाव तो परिक्रमा इतने लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये सब परिक्रमा कर रहे हैं और वो परिक्रमा नहीं गए थे, उसकी हमने परिक्रमा लिखी। तो वो कह रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे ये परिक्रमा कौन करता है? एक व्यक्ति करता है, वो कौन? गुरुदेव जी परिक्रमा कर रहे हैं और सब लोग नहीं करते, किंतु उनके परिक्रमा करने से सबकी परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि मूल उद्योगता वही है। हम समझते हैं कि हम लोग परिक्रमा कर लिए, नगर संकीर्तन हम कर लिए, ये जन्माष्टमी हमने मना लिया, ये सब हम समझते हैं, किंतु वास्तविक में कौन कर रहा है? गुरु पाद पद्म कर रहे हैं, करा रहे हैं। उनमें से निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, कोई मूल्य नहीं होगा, ये समझ लो। उसमें प्रतिष्ठा, कर्म, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, आमदनी, ये सब प्रधान हो जाएगा ना? पैसा पैदा करना, प्रशंसा ले लेना और ये सब चलाया, मूल उद्देश्य जो भगवत भक्ति है, प्रेम भगवान का प्राप्त करना, ये नहीं होगा, साइकिल हो जाएगी, ये समझ लो। इसलिए हम लोगों का प्रयत्न ये जन्माष्टमी नहीं है। अभी देखो ना, हम लोग अभी लगे हुए हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, पास ये प्रसाद बांटो, ये करो, वो करो, और सब इसमें लगे हुए हैं। अरे किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? ये उद्देश्य नहीं होने से उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ हो गया, मन खराब हो गया। और जिनका यह संबंध ज्ञान ठीक है ने? वो इसमें तनिक भी विचलित नहीं होगा और वो यथार्थ। इन्हीं बातों के लिए तो हम गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु के यहाँ जाने का तात्पर्य क्या है?
प्रसाद यदि नहीं बांटा जाए तो अगले साल चीनी का बोली नहीं मिलेगा।
हाँ, तो यही बात है, उनको सिवा में उत्साह दिया गया, किंतु संबंध ज्ञान से युक्त होकर के मैं कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को कोई भी एक बोली चीनी नहीं देगा। यदि गुरु बच्चों से हम संबंधित न रहे, ऐसा समझ करके जात अपराध होना, आनंद उत्पन्न, आनंद नहीं हुआ उस समय, इतने लोगों को खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं और परिश्रम से थक करके चूर हो गए, बेकार का झंझट हो, तो वो बेकार का झंझट उनके लिए हो, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं रहा। इसलिए संबंध ज्ञान के द्वारा गुरु तुम नरक हो, वो कृपा करके अपना संबंध ज्ञान करके दे सकते, उसको संबंध ज्ञान करके उनको दीजिए। इसलिए गायक बुलाए गए आए अपने आप नंद भवन में, विप्र लोग आए, सुख माने वंश की परिक्रमा करते हैं ऊपर से नीचे तक, एकदम लगा देंगे शत्रु के प्रारंभ से और अभी तक झड़ाझड़ बोल जाएंगे, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। सुत मारुती और विप्रों को ऐसा होता, वो सब लगा देंगे
याद करके रखते हैं।
अभी आप चले जाइए, आपने दिन भागवत के कौन से पार्ट से आए हुए हैं वृंदावन मथुरा, वो आपके पीछे लगे, बाबू कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं पंडित, आप नहीं बतलाएं थे खोज खास करके जैसे, और जहाँ कुछ नाम बतलाया बट आपके पुरखों का नाम सब ले लेंगे, 10-20-25 पुरखों का नाम बतला करके ऐसा विश्वास उत्पन्न करेंगे। यदि साधारण नहीं, आप नहीं जानते उनका नाम और वो सब जानते हैं, उनका सब लिखा है पैसा, ऐसे ये सुतमाल पर ये सब उनकी परंपरा को जानने वाले। परंपराएं दो होती हैं, एक वंश परंपरा और एक गुरु परंपरा, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है, फिर भी गुरु परंपरा का महत्व अधिक है, गुरु परंपरा जानना चाहिए, नहीं तो लाइन विच्छिन्न हो जाने पर भक्ति की धारा भी विच्छिन्न हो जाए, आप ब्रह्मा को मानते हैं और बीच वाले को छोड़ दिया बस अपने गुरु को जानते हैं, तो भक्ति विच्छिन्न हो जाएगी, क्योंकि वहां उनको कहां से मिला। इसलिए गुरु परंपरा का रोज आदर करना चाहिए, उसका कीर्तन भी करना चाहिए, यदि उतना नहीं कर सकते अंततः गुरु परंपरा को ऊपर से या नीचे से प्रणाम, अपने गुरु को उनके गुरु को करते हुए सबको प्रणाम करो, कृष्ण तक एकदम लगा दो, नहीं तो धारा रुद्ध हो जाए। सुत माधव लोग यही गुरु परंपरा वंश परंपरा का ये सब परिचय देते हैं। बंदिना गायक अच्छे अच्छे गायक लोग जो भगवान का गुणान बात करने वाले जब तो ये लोग सब आए, ये लोग भी काम करने लगे, बाजे बजाने लगे, दुंदुभी इत्यादि ढेरिया ढेरी ढेरी कुछ होती है, एक तो ऐसा होता है एक जैसा बजाते, उसको सुधुका कहते थे, ब्रज सम्मिष्ट संसिक्त द्वारा अजीर गृहांत चित्र भज पताका सब पैल पल्लव तोरण, ब्रज एकदम सुसज्जित हो गया क्षण मात्र में, जहां पर एक नहीं करोड़ों लक्ष्मियां जहां पर हैं, वो ब्रज कैसा जब कृष्ण ही जब हो रहा तो कौन सजाया, ये सब लक्ष्मियां सजा रही हैं। वाह तोरण सब लगा दिए, द्वार सजा दिए, कलश दोनों तरफ रख दिए, केले के स्तंभ गा दिए, हाम्र पल्लव चारों तरफ में लगा दिए, बंदर मार बना गया, कागज का झंडा नहीं बनाया गया, ये तो मुगल पीरियड से आरंभ हुआ, हमारे हिंदुओं यहाँ ये कागज की झंडी लाल मिली ये सब वो हीरे जवाहर रत्न सोने से खचित सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि सजाए जाते थे, और केले आम के पत्ते और सब अशोक के पत्ते इत्यादि के द्वारा खड़े सोने के रत्न एक दरवाजे पर, और उसमें तीर्थों का जल थप दिया, ऊपर में डाब अर्थात नारी कर वहां पर पूजन हुआ विधिवत, अगरू से गलियां धो दी गई, अगरू चंदन भजा चित्र पताका पल्लव इत्यादि के साथ साथ कुल सजा दिया गया, गावो वृषा वत्सतर हरिद्रा पैल रूपिता, गाय और बछड़े और सांड इनको हल्दी तेल, हरिद्रा तैल इनको मिलाकर और कुमकुम इत्यादि बनाकर और पंजे की छाप और इसमें गेहूं से सिंह रंग दिए, सूरों को भी रंग दिया और बहुमूल्य रत्न से खचित वस्त्र सब मखमल के वस्त्र इनको उठा दिए। विचित्र धातु वरह स्रग वस्त्र कांचन मालिना उनको सजा दिया गया। धातु माने गैरी किया, बरह सुंदर माला, स्रग
बरह माने मोर पंख,
मोर पंख
स्रग माने माला,
बरह माने बरह माने मोर पंख,
स्रग माने
यहाँ माला लगा कर तो उसने लगा दी। कांचन मालिना सोने की मालाएं से उनको सजा दिया, उसमें सोने की घंटी लगा दी गई। जैसा ग्वालों का होना चाहिए, गोपों का होना चाहिए, किसी रूप में वर्णन कर रहे। महान वस्त्र आभरण कंच को उत्सणी भूषिता गोपाई राजन नाम उपाय नाम है। गोपों को पता लगा हर मात्र में हजारों लाखों गोप सुंदर पगड़ी बांध करके उत्सणी अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और आभरणों को पहन करके कानों में कुंडल झूल रहे हैं और सुंदर कपड़े पहन करके गोपास माया नंद बाबा को पुत्र हुआ है। क्या
नंद की आनंद भाई
उनको आशीर्वाद देने के लिए नंद बाबा और बुढ़ापे में हुआ है थोड़ा सा, इसलिए सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ उनको आशीर्वाद देने के लिए बच्चे को और बधाई नंद बाबा को देने के लिए। सब लोग नाना उपायन पाय हाथों में उपायन लेकर के, उपायन क्या है घी दूध दही मक्खन ये सब बच्चे का ये सब चीजें लेकर बच्चे के लिए बच्चे के लिए सिंगलिया ऊपर के कपड़े कानों के कुंडल हाथों के लिए सोने की लोला और सब जो जरूरत होती है वो सब चीज और थोड़ा सा बड़ा होने पर क्या क्या पहनेगा वो सब चीजें हाथ इत्यादि लेकर के और वहाँ पर सब उपस्थित हुए। गोप्य भला गोपियाँ चुप जा बैठ जाए, आनंद गोपियों को अधिक है न गोपों को आनंद है, हमारे समझ से गोपों से भी आनंद इन गोपियों। मनुष्य तो पुरुष जो होना वो भीतर में रख लेगा और शांत होकर जाए, किंतु इनका आनंद बाहर एकदम बह निकलेगा और सब ब्रज को भी डुबा देगा। ये गोपियां भी पीछे नहीं रहेगी। आकर्ण सुना दे जसोदा जी को लाला फैलेगा, बड़े आनंदित हो गए लाला के नाम से। मुदिता जसोदा जाती तो अभवन जसोदा जी के पुत्र लाला बस आनंद के मारे गए। सब उन्होंने क्या किया, आत्मानंद अपने को भूषयान चक्रु आभूषण का काजल लंबा किया, आभूषण लगाया सुंदर सुंदर अधो वस्त्र माने लहंगा और ऊपर से सिंदरी सुंदर सुंदर चूड़ियां सोने की और यहाँ पर हार इत्यादि सब पहनी। अंजना देवी नौ कुमकुम किन जल कर मुख पंकज भूकर बलिधि परिसम जगनी कुछ स्वर्ण चरक पूजा। वे नौ कुमकुम से अपने अंगों को भूषित कर रही अत्यंत सुंदर बुखार बिंदु से प्रसन्नता से चल रही है। नौ कुमकुम बलि भी तरह तरह के उपहार सब दिए हुए हैं। अभी नौजवान संपन्ना गोपियां हैं, कुछ वृद्ध भी हैं, ये सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण करके चल रही कान से कंदल चलती हैं तो उनका अग्रभाग ये खूब फूल कमर खूब पतली उनका ये सब हिलने लगता है। और सूक्ष्म हीन वस्त्र पहनने से अंग का जितना सौंदर्य है वो सब मानो आच्छादित होकर के चारों तरफ से छूट रहा है। गुप्त सुमित मणिकुंडल निष्कंठ चित्राम्बरा पतिशिखा चित्र माल्य वर्षा नंदालय सबल्या प्रजति तेजु त्यालोक कुंडल पयोधर हार शोभा, ये सब वर्णन किया है। जो गोपियां नंदालय में जा रही थी कानों में सुंदर मणिमय कुंडल झलक रहे, कंठ देश में पदक हार रहे, हस्त जुगल में बलय शोभा, बलय मैंने क्या
बाला मोटा मोटा
सोने के चूड़ियां भी हैं, विचित्र वस्त्रों को पहन रंग बिरंगी वस्त्र उनके केशाग्र से जब चल रही है कुछ स्थूल आकृति भी है, बड़े धीरे धीरे चल रही है और फूल से कबरी से मालाएं और पुष्प सब गिर रहे हैं, बिखर रहे हैं रास्ते में। चंचल कुंडल पयोधर और हाथ सफल, ये सब उनके दो दुल्यमान हो रहे हैं और वो नंद भाव में लाइन की लाइन ये सब आ रही है और वो क्या कर रही है, आपकी सब प्रेम जना चिरम पारी नंद पुत्र चीर जीवित हो, तुम्हारा मंगल हो कल्याण हो, कल्याण तुम्हारा तुम चीर जीवित हो, ऐसे आशीर्वाद वो सब दे रहे। और हरिद्रा तैल और जल के मिलाकर के भगवान को अभिषेक किया, मैंने कृष्ण का अभिषेक किया और स्तुति गान कर रही है सब नारायण इत्यादि के, जिनकी कृपा से ये मंगलाला हुआ, इसी तरह से मंगलमय उनका भवन होगा और फिर सब बधाई की गान इत्यादि सब। अब समय हो गया है, अंधकार हो रहा है, इसलिए आज बधाई होने की बात थी, कुछ लोग आने की बात थी तो आए नहीं। आई आई
कि यशोदा जी के यहाँ लाला भयो है, हम मथुरा की बात तो छोड़ दें, हम तो वह गोकुल की बात करें कि हमारे तो गोकुल में जन्म भयो लाला
ऐसा ही मांगे।
देवल दुख द्वंद देव जी को कचो फंद और कंस मत मंद की जमी है नीम काल की, ब्रजवासिन ही वही सब बात ही पसंद आज, रूप की उमंग रस खुल पड़ी ख्याल की, ग्वाल कब सुतिल को छंद सो छंद भयो, मोहन बुलंद भयो मूरत रसाल की, ब्रजेक चंद भयो नारी नद नंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो। तो ब्रजवासी अपने अपने घर से कोई लड़ुआ, क्योंकि ब्रजवासी को मिष्टान बहुत प्रिय है, तो एक ब्रजगोपी ने सुनी तो वो कहा कह रही है, अरे अनो हो जायो लले नामे बेदन में सुन आई,
यमुना पहली सुन आई मैं, Yeah.
वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्वरामनी को श्यामा श्याम नामनी को मंदिर आनंद को काली धै नाननी को यमुना पे पाननी को रेणुका को भान मानो स्वादनी को कंद को राधा कृष्ण कुंड के आनंद लो।